नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कौरव पांडवों का खूब बड़ा संग्राम चलता है। कल के कथा प्रसंग में आया, कर्ण ने कहा कि ये भीष्म पितामह है ना, ये पांडवों के पक्ष रहने वाले हैं, आप इनको युद्ध से हटा दो, मैं आ जाऊंगा युद्ध करने, सबको खत्म कर दूंगा। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि बूढ़े हो गए हो तो कोई बात नहीं, आप विश्राम करो। भीष्म पितामह ने उनको खूब डांटा भी और कहा कि मेरे कर्म में संदेह मत करो। एक बात है, भगवान कृष्ण जिस पक्ष में है, अर्जुन जिस पक्ष में है, उसको जीतना आसान नहीं है। फिर भी मेरा कर्तव्य युद्ध करने का है, मैं युद्ध करूंगा, एक शिखंडी के सामने बाण नहीं मारूंगा। बस दुर्योधन चला गया, कर्ण को और सबको बात बता दी, सब चुप हो गए। संजय ने कहा कि हे महाराज धृतराष्ट्र जी, रात बीतने के बाद प्रातःकाल हुआ, दोनों सेनाएं फिर अपने शिविरों को छोड़कर के युद्ध भूमि में आई। पितामह भीष्म ने सर्वतोभद्र नामक व्यूह रचना की और उस व्यूह से वे आगे बढ़ रहे थे पांडवों पर विजय प्राप्त करने के लिए। बड़े बड़े योद्धा उसके चारों तरफ खड़े थे। इधर पांडवों की सेना युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीमसेन उसके मुहाने पर खड़े थे। धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, ये कौरवों के मुकाबले में अपनी सेना का व्यूह बना करके ये भी खड़े हुए थे। खूब घमासान युद्ध होने लगा, एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की बड़ी होड़ लगी हुई थी। इधर उधर खूब संग्राम होने से हाथी, घोड़े, रथ, पैदलों के चलने से खूब धूल उड़ने लगी और देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम देने लगा। बड़ा अशुभ मुहूर्त आया, घोड़े, हाथी और राजाओं के शब्द बड़े भयंकर और डरावने लगे। आज के युद्ध में सबसे पहले अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करके मोर्चा अपने हाथ में लिया और जैसे कोई समुद्र में घुसता है अकेला, ऐसे वो कौरवों की सेना में चला गया। वह क्रोधपूर्वक यमराज के दंड के समान भयंकर बाणों से युक्त होकर शत्रु सेना के रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार सबको विदीर्ण करने लगा। उस समय सब आश्चर्य करने लगे। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ वगैरह कह रहे, कोई दूत अर्जुन आ गए क्या, ऐसा मालूम दिया। तब दुर्योधन ने अपने सैनिक राक्षस अलम्बुस से कहा, तुम जाओ और युद्ध करो। अलम्बुस वहां गया। अभिमन्यु के साथ द्रौपदी के 5 पुत्र और भी थे, वो बड़ा भयंकर युद्ध करने लगा। बड़ी प्रकार की उसने माया दिखाई, कभी तो उसने अंधेरा दिखाया, कभी उसने अपने को छिपाया। अभिमन्यु के पास एक ऐसा शस्त्र था, उस शस्त्र का नाम था भास्कर शस्त्र। तो जो उसने अंधकार फैलाया तो उसने भास्कर ने प्रकाश फैला दिया। उसकी कोई माया वहां पर नहीं चली और अभिमन्यु सेना को कुचलता गया। भीष्म जी ने देखा कि कौरवों की सेना एक छोटे से बालक के कारण से घबरा रही है, तो वे मन ही मन में अभिमन्यु के बल की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। और फिर उसके बाद वह उस भागती हुई सेना की रक्षा के लिए तैयार हो गए। खूब घमासान युद्ध हुआ। भीष्म जी, अर्जुन, सात्यकी ये सब आपस में युद्ध कर रहे थे। महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्रों की रक्षा के लिए, आपके पुत्रों की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए, अर्जुन के सामने आए। दुर्योधन ने त्रिगर्तराज सुशर्मा को अर्जुन से युद्ध करने के लिए मोर्चे पर आगे भेजा। अर्जुन ने अपने रण कौशल से सुशर्मा की सेना को परास्त किया। इस समय खूब भयंकर मध्यान्ह का समय था। गंगानंदन भीष्म जी पैनों बाणों से पांडव पक्ष की सेना का संहार करने में जुट गए थे। आज इतना बल था इनमें कि भीष्म जी धृष्टद्युम्न को बींद कर तीन बाणों से विराट को घायल किए, एक बाण से द्रुपद को घायल किए, सबको घायल करते जा रहे थे। शिखंडी सामने आया, शिखंडी ने पितामह को बींद दिया, पितामह ने उस पर शस्त्र नहीं चलाया। फिर धृष्टद्युम्न आया, उसने उनके छाती पर बाण लगाए, भुजाओं में बाण लगाए, द्रुपद ने 25 बाण लगाए। ऐसे भीष्म के साथ सबका युद्ध हो रहा था। अर्जुन दूसरे मोर्चे पर सुशर्मा के साथ युद्ध कर रहे थे। पांडवों की सेना को भीष्म ने बड़ा पांडवों की सेना में भय पैदा कर दिया और अर्जुन आदि के जोर जोर से बोलने पर पांडव सेना थोड़ी देर के लिए रुक जाती, लड़ती और फिर कभी द्रोणाचार्य तो कभी भीष्म कभी और योद्धाओं से पराजित होती गई। आचार्य द्रोण ने द्रुपद को बींद करके सारथी को घायल कर दिया। भीमसेन की बातों में उसी समय सेना आई, राजा वाली के घोड़े, सारथी, रथ इन सब को नष्ट किया और तुरंत ही वे दूसरे रथ के ऊपर चढ़ गए, बड़ा विशाल धनुष लिया। उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा, वीर इस समय पितामह की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिखंडी के सामने बाण चलाएंगे नहीं, ऐसी स्थिति में कहीं शत्रु सेना इनका दुरुपयोग न कर ले। इधर शकुनी 1,00,000 सुशिक्षित घुड़सवारों को लेकर नकुल, सहदेव और धृतराष्ट्र को रोकने में लगा हुआ था। दुर्योधन ने पांडवों की सेना को रोकने के लिए 10,000 घुड़सवार अलग से रख रखे थे, परंतु युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव बड़ी फुर्ती से घुड़सवारों का वेग रोकने लगे और वे आगे बढ़ते गए और पांडव लोगों का उत्साह बढ़ता गया। दुर्योधन ने देखा कि हमारी सेना का उत्साह नष्ट हो रहा है, तो उन्होंने मद्र नरेश शल्य से कहा, देखिए ये आपके भांजे नकुल और सहदेव हमारी सेना को रोकने में लगे हुए हैं, आप इनके साथ युद्ध कीजिए। शल्य आए युधिष्ठिर के सामने, बड़ी भारी विशाल सेना थी, युधिष्ठिर के ऊपर टूट पड़े। धर्मराज ने उसको वहां रोक लिया और शल्य की छाती में 10 बाण मारे। नकुल सहदेव ने भी 7-7 बाण मारे। इस प्रकार से ये यहां युद्ध होता गया। इधर सूर्यदेव पश्चिम की ओर ढलने जा रहे थे और भीष्म जी अपने बाणों से पांडवों की सेना पर टूट पड़े, उनका कोई बाण व्यर्थ नहीं जाता था। पांडवों ने फिर भीष्म पितामह को घेरा, लेकिन जैसे वन के अंदर कोई आग लगती हो उसको कोई रोक नहीं सकता है, ऐसे अजय भीष्म के बाणों के प्रहार को कोई नहीं रोक सका और पांडवों की सेना में बड़ी मारघाट मच गई। तब कृष्ण ने अपना रथ रोक करके कहा, अर्जुन तुम जिसकी प्रतीक्षा में थे उस समय आ गया है, इस समय मोहग्रस्त मत होना, भीष्म पर वार कर। तुमने विराट नगर में राजाओं के सामने एकत्रित होकर संजय के सामने क्या कहा था कि मुझसे संग्राम भूमि में भीष्म, द्रोण आदि जो भी धृतराष्ट्र के सैनिक युद्ध करेंगे उन सबको मैं उनके अनुयायियों सहित मार डालूंगा। अर्जुन उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ, उस बात को सच्चा करके दिखाओ। अर्जुन क्षात्र धर्म पर विचार करो, पारिवारिक संबंधों के विचार करने का ये अवसर नहीं है, जाओ अर्जुन बेखटके युद्ध करो। अर्जुन ने कोई परवाह नहीं, अर्जुन ने बेमन से कहा, अच्छा चलो आप कहते हो तो जिधर भीष्म जी है उधर घोड़ों को हाँक दो, जैसा भी मेरे से बन पड़ेगा वैसी मैं आज्ञा का पालन करूंगा। और भीष्म जी के सामने युद्ध करूंगा। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन का विशेष मन नहीं है, पर फिर भी भगवान ने रथ हाँका और एकदम सामने आते भीष्म पितामह को देखकर भगवान ने कहा, अब अपना युद्ध प्रारंभ करो। देखो भीष्म तुम्हारे नजदीक आते जा रहे हैं। भीष्म जी ने बाणों की वर्षा की, अर्जुन ने भी की, दोनों एक दूसरे को खूब बाणों से बींद रहे थे। भगवान भी उस समय बड़े विलक्षण ढंग से रथ का संचालन कर रहे थे। अर्जुन उनके रथ को तोड़ते थे, भीष्म जी एक क्षण में दूसरा धनुष चढ़ा लेते थे, अर्जुन ने उसको भी तोड़ा। अर्जुन की फूर्ति देखकर भीष्म जी मुस्कुराए और कहने लगे, वाह महाबाहो अर्जुन शाबाश, कुंती के वीर पुत्र शाबाश, तुम्हारी शूरवीरता पर मैं प्रसन्न हुआ। फिर उन्होंने दूसरा धनुष लिया, अर्जुन ने बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय घोड़ों की चक्करदार चाल से भीष्म के बाणों को व्यर्थ करने के लिए भगवान ने यूं रथ घुमाया है। अब निशाना लगाओ कैसे लगा दो, यूं रथ घुमाए, किंतु युद्ध करने में अर्जुन की शिथिलता दिखाई दे रही थी। यद्यपि भीष्म जी उसकी प्रशंसा कर रहे थे, पर भगवान को अभी भी अर्जुन की कुशल अर्जुन की शिथिलता समझ में आ रही थी। वो समझ रहे थे कि ये मन से नहीं लड़ रहा है, भीष्म जी सामने। उसी समय भगवान अर्जुन की ये बात सह नहीं सके। युधिष्ठिर भी वहीं पर थे, युधिष्ठिर जी की सेना खूब लड़ रही थी, प्रलय मचा रही थी, लेकिन भीष्म जी के सामने युधिष्ठिर की सेना भी हारती हुई मालूम दी। तब भगवान को कुछ सहन नहीं हुआ, वे झट से घोड़ों की रास छोड़कर कूद पड़े और सिंह के समान गरजते हुए पैदल ही वो चाबुक लेकर पितामह भीष्म की ओर मारने के लिए दौड़े। और चाबुक से कोई घोड़ा है गई आगे, उनके पैर की धमक से मानो पृथ्वी कटने लगी, फटने लगी और उनके आंखें क्रोध से लाल हो गई। उस समय आपकी और के वीरों के हृदय तो एकदम सुन्न से हो गए और सब जगह कोलाहल होने लगा कि हे हे कृष्ण भीष्म को मारेंगे, कृष्ण भीष्म को मारेंगे, देखो देखो कृष्ण का क्रोध देखो। थोड़े कृष्ण की छवि को भी सुन लीजिए महाराज, श्री कृष्ण रेशमी पीताम्बर धारण किए हुए थे, उससे उनका नीलमणि के समान श्याम सुंदर शरीर विद्युल्लता से सुशोभित श्याम मेघ के समान जान पड़ता था। भगवान का शरीर तो श्याम और पीले वस्त्र से बिजली जैसे प्रतीत होता था। सिंह जिस प्रकार हाथी पर टूटता है उसी प्रकार भी गरजते हुए बड़े वेग से भीष्म की ओर दौड़े। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखकर पितामह ने अपना विशाल धनुष चढ़ाया, तनक भी वो घबराए नहीं और कहने लगे, कमल लोचन आइए आइए, हे देव मैं आपको श्रद्धा से प्रणाम करता हूं, हे यदुश्रेष्ठ अवश्य ही आज मेरा वध कर दीजिए। युद्धस्थल में आपके हाथ से मारे जाने से मेरा सब प्रकार कल्याण होगा। हे गोविंद आज आपके युद्ध क्षेत्र से उतरने में मैं तीनों लोकों में सम्मानित हो गया, मुझे कितना बड़ा गौरव दे रहे हैं। एक तुच्छ भीष्म को मारने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं चाबुक लेकर आ रहे हैं। आइए महाराज आप इच्छा अनुसार मेरे ऊपर प्रहार कीजिए, मैं आपका दास हूं और आपके सामने सिर झुकाए खड़ा हूं, करो आप मेरे पर प्रहार। एक तरफ तो ये हो रहा था, उधर अर्जुन ने देखा कि कृष्ण ने मेरा रथ छोड़ दिया है, वो भीष्म जी को चाबुक से मारने के लिए जा रहे हैं उसी समय अर्जुन भी, अब मैं इस रथ में बैठ के क्या करूंगा, रथ से कूदा और कूद करके बड़ी फुर्ती से भगवान को भुजाओं में ले लिया। भगवान ने अर्जुन की कोई परवाह नहीं की, अर्जुन को घसीटते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। तब 10 कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और बड़े प्रेम से दीनता पूर्वक कहा, महाबाहु लौटिए, आप वापस लौट सकिए। आपने इस युद्ध से पहले ये प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप उसे मिथ्या मत होने दीजिए। प्रभु आप कौन हैं? आप हमारे सब कुछ होते हुए भी अनंत ब्रह्मांडों के आप स्वामी हैं, आप सत्य स्वरूप हैं। कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए आप संसार में मिथ्यावादी बन जाए, झूठ बोलने वाले बन जाए। कोई आपके लिए ऐसा न कह दे कि कृष्ण ने युद्ध के अंदर असत्य का सहारा लिया था। हे प्रभु, ये युद्ध का भार आप मेरे पर रहने दीजिए, मैं पितामह का वध करूंगा। हे कृष्ण, मैं आपके चरणों की सौगंध, सत्य की सौगंध, सारे पुण्यों की सौगंध और मेरे पास जितने शस्त्र उन सब की सौगंध खा के कहता हूं मैं भीष्म का वध करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले और क्रोध से बार बार भीष्म को देखते रहे। आकर के वापस रथ में तो बैठ गए लेकिन दृष्टि क्रोध से देख रहे और शांतनंदन भीष्म भगवान की क्रोध मुद्रा से भगवान के हृदय की कृपा को स्वीकार कर रहे थे। बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि मेरे पर आज भगवान ने दोनों अपने रथों पर बैठ गए। उसके बाद पितामह भीष्म ने अर्जुन पर फिर बाणों की वर्षा की, खूब बाणों की वर्षा की, इसलिए कि शायद भगवान फिर मेरी तरफ आए। भीष्म जी ने पांडवों के दल में बड़ी भगदड़ मचा दी, हजारों की संख्या में पांडव लोग मरने लगे, पांडव लोग निरुत्साहित हो गए, भौचक्के हो गए। भीष्म जी के अमानवीय पराक्रम को देख करके सब आश्चर्य में डूब गए। जैसे दलदल में फंसी हुई गाय अपने आप को निकलने में असमर्थ पाती है, इसी प्रकार आज पांडवों की सेना भीष्म जी के पराक्रम रूपी दलदल में फंसी हुई अपने को असमर्थ पाने लगे। भीष्म जी पांडवों की बलहीन वीरों की सेना को चींटी की तरह मसल मसल करके आगे बढ़ रहे थे। इसी समय भगवान सूर्य अस्त हो गए, दिन भर से थकी हुई सेनाओं का युद्ध बंद हो गया। भगवान सूर्य के अस्ताचल की ओर जाने के बाद जब लड़ाई बंद हो गई तब भीष्म के बाणों की मार खा खा करके पांडव सेना भय से व्याकुल होकर हथियार फेंक कर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार किए किए तथा सोमक क्षत्रिय हार कर अपना उत्साह खो बैठे। तब युधिष्ठिर जी के पीछे लौटे हुए देखा तो युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली, सब अपने अपने शिविरों में चले गए। भीष्म के बाणों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम को याद करते थे तो पांडव लोग बैठे बैठे तिलमिला जाते थे, शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी संजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते सुनते अपने शिविर में आ गए। रात्रि के पहले पहर में, खूब ध्यान से सुनिएगा, रात्रि के प्रथम पहर में पांडव वृष्णि संजय इन सब की एक मीटिंग हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से विचार करने लगे कि अब अपना क्या करने से भला होगा। सब लोग बैठे थे, बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं ना? जैसे हाथी नरकुल को वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार हमारी सारी सेना को भीष्म जी कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठान कर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूं। हे कृष्ण, अब मेरा विचार सुनिए। मेरा विचार है वे वन में चला जाऊं, वहां जाने में अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की यही दशा होती है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चुका है। हमारे भाई बाणों की चोट को बेहद कष्ट से झेल रहे हैं। मेरे प्रति बहुत स्नेह होने के कारण मेरे भाइयों ने आज तक बहुत कष्ट उठाया है। मेरे कारण से राज्य से भ्रष्ट हुए, मेरे कारण से इनको वन वन में भटकना पड़ा, मेरे कारण से द्रौपदी को कष्ट भोगना पड़ा। हे मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान समझता हूँ और वही इस समय दुर्लभ हो रहा है। क्या पता कब हमारे शरीर में भीष्म का बाण लगे और हम मर जाएं। अब जिंदगी के कितने दिन बाकी हैं हम कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए मैं युद्ध को छोड़कर उत्तम धर्म का पालन करना चाहता हूँ। युद्ध के अंदर सिवाय मारना हिंसा के अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। यदि आप हम लोगों को अपना समझते हो तो आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारा हित हो और धर्म में भी बाधा न पड़े। युधिष्ठिर की ये करुणा भरी बात सुनकर सर्वदा मुस्कुराने रहने वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप धर्म का पालन करते हुए ऐसे विषाद करेंगे? नहीं, ये आपकी शोभा नहीं है। आप अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं। वैसे भी आप शूरवीर हैं, दुर्जय हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, फिर भीम जैसा भाई और अर्जुन जैसा भाई, ये तो वायु और अग्नि के समान भी तेजस्वी हैं। नकुल सहदेव कोई कम पराक्रमी है? हे महाराज युधिष्ठिर, आपकी इस बात को सुनकर मुझे बड़ी चिंता हुई है। आप चाहे तो मुझे युद्ध में लगा दें, मैं आपके स्नेह से बंधा हुआ हूं, मैं भीष्म से युद्ध कर सकता हूं। आप सब बैठे रहिए, मैं अकेला भीष्म से युद्ध करूंगा। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्यों नहीं कर सकता? कोई मुझे कहेगा कि आपने प्रतिज्ञा की थी, मैं कह सकता हूं कि मैं मेरे मन से नहीं, मैं युधिष्ठिर की आज्ञा से युद्ध कर रहा हूं। कौन मुझे रोकने वाला, कौन मुझे कहने वाला, इसकी हिम्मत कहने के? उस दिन तो अर्जुन ने मुझे पकड़ लिया, नहीं तो मैं स्वयं उनके साथ सुदर्शन चक्र से युद्ध करता। मेरा सुदर्शन चक्र कभी व्यर्थ नहीं जाता है और मेरा प्रहार भी उठावा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है तो मैं अकेला उन्हें मार सकता हूं। महाराज, आप तनिक भी विषाद मत कीजिए। जो पांडवों का शत्रु है वो इस कृष्ण का भी शत्रु है, और जो पांडवों का मित्र है वो मेरा अपना मित्र है, और जो मेरा शत्रु है वो आपका है, और जो मेरा अपना है वो आपका है। आपका भाई अर्जुन मेरा सखा है, मेरा संबंधी है, मेरा शिष्य है, मेरा स्वरूप है, आवश्यकता हो तो मैं अर्जुन के लिए अपने शरीर का मांस काट कर भी दे सकता हूँ और ये अर्जुन मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने आपस में प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे, अतः आप आज्ञा दीजिए। सूर्योदय के बाद कल से मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन ने उपप्लव्य में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूंगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करने का अधिकार है। मैं कह सकता हूं कि कृष्ण और अर्जुन दो नहीं है, एक है। अर्जुन की प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वो मुझे बताइए, मैं अवश्य पूरा करूंगा। क्या भीष्म को मारने कोई बड़ी बात है? हम तो ये खेल तमाशा समझते हैं। अर्जुन के लिए बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो असंभव काम को भी संभव बना सकते हैं। दैत्य दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाए तो अर्जुन उन्हें मार सकते हैं। भीष्म की तो क्या बिसात है। युधिष्ठिर ने कहा, माधव आपकी बातों से मुझे बड़ी शांति मिली, बल मिला। मैं जानता हूं कि कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग सहन नहीं कर सकते। जिसके पक्ष में आप, उसका मनोरथ पूर्ण करने में क्या संदेह है? हे गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार हैं तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूं। भीष्म की तो क्या बात है। किंतु क्या बात है महाराज? किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए, आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए मैं कह नहीं सकता हूं कि आप युद्ध करो। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही हमारी सहायता करें। भीष्म जी मेरे साथ सत कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा पर तुम्हें हित की सलाह देता रहूंगा। वे मुझे राज्य देने वाले हैं और वे मुझे अच्छी से अच्छी सम्मति भी देने वाले हैं। मेरे विचार में आता है, हम सब लोग मिलकर भीष्म जी के पास क्यों न जाएं और उन भीष्म जी से क्यों न पूछें कि हे पितामह, आपका वध का उपाय क्या है, आप कैसे मरोगे? ये उन्हीं से ही पूछा जाए, वे अवश्य हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार अपन काम करेंगे। क्योंकि जब हमारे पिता मर जाएंगे तब हम लोग निरे जब हमारे पिता मर गए थे तब हम लोग निरे बालक थे, उस समय इन्होंने हमारा पालन पोषण किया। माधव, वे हमारे पिता के भी पिता हैं, वृद्ध हैं, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। कभी कभी तो विचार आता है, कृष्ण धिक्कार है इन क्षत्रियों की वृत्ति को। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर महाराज आपकी राय मुझे पसंद है, घबराओ मत, क्षत्र धर्म अपनी जगह बहुत श्रेष्ठ है। आपके पितामह देवव्रत बड़े पुण्यात्मा हैं, वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं, अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची बात बताएंगे, क्योंकि उनके हृदय में आप एक बहुत बड़े सत्यवादी धर्म पुरुष हैं और सब लोग आपको सत्यवादी मानते हैं। सत्यवादी के सामने कोई असत्य बोल नहीं सकता है। उनकी जैसी सम्मति होगी उसके अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय सबके अस्त्र शास्त्र कवच उतरे हुए थे। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और भीष्म जी ने प्रत्येक पांडव के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। तब भीष्म जी ने अपने पास आए हुए श्री कृष्ण को देखकर कहा, हे वासुदेव, बहुत प्रसन्न मन से मैं आपका स्वागत करता हूं। हे धर्मराज, हे अर्जुन, हे भीम, हे नकुल, सहदेव, आप सभी मेरे प्रेम के पात्र हो। इस समय रात्रि में विश्राम के समय आप लोगों के आने का कारण क्या है? इस पितामह को कौन सा ऐसा काम करना है जिसमें आपकी प्रसन्नता हो? बताओ पुत्रों, मेरा आप में अपार स्नेह है। बताओ, आपका कोई कठिन से कठिन काम हो तो अभी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने दीनता पूर्वक कहा, महाराज जिस उपाय से ये प्रजा का संहार बंद हो जाए वो बताओ। आप स्वयं ही हमें अपने वध का कोई उपाय बताइए। इस युद्ध में आपका वेग हम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखती है। बड़ी फुर्ती से बाण, बड़ी फुर्ती से धनुष, बड़ी फुर्ती से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाना, जब आप रथ घोड़े हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं, उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस करेगा? दादाजी, हम आपके बच्चे हैं, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई है, अब आप ही बताइए हम आपको कैसे जीत सकते हैं और किस प्रकार हमारा धर्म का राज्य हमें मिल सकता है। तब भीष्म जी ने बड़ी प्रसन्नता से हंसते हुए प्यार से स्नेह से कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूं, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती है, मेरे परास्त होने पर भी तुम लोगों को विजय होगी। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितना जल्दी हो सके मुझे मारो, मैं अपने प्रहार करने की आज्ञा देता हूं। देखो युद्ध में तुम मेरे पोत्र हो, मैं तुम्हारा दादा हूं, इस संबंध को भूल जाओ। मैं तुम्हें बहुत पुण्य की बात कहता हूं, तुम मेरे पर प्रहार करो और मेरे मर जाने के बाद सारी कौरवी सेना मरी हुई है, इसलिए मैं अपने मरने का उद्योग तुमको बताता हूं। युधिष्ठिर बोले, दादाजी आप कोई उपाय बताएंगे तभी तो हम आपको जीत सकते हैं। आपका क्रोध यमराज से कम नहीं है, आपका बल इंद्र वरुण और यम से कम नहीं है, सबको आप परास्त कर सकते हैं, हम आपको किस उपाय से मार सकते हैं? तुम्हारा कहना यह भी सही है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे या हथियार गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, कोई शत्रु भाग जाए या कोई डरा हुआ हो, अरे मैं आपकी शरण में हूं ऐसा कह दे, फिर वो स्त्री हो या स्त्री के समान जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो और जिसके एक ही बेटा हो और जो लोक में बड़ा निंदित होता हो, उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वो पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, फिर वो पुरुष बना है, इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करे और स्वयं शिखंडी के पीछे रहे, जब तक मेरे बाण जहां तक अगल बगल में जाते हो वहां से अपने को सुरक्षित करता रहे, और अर्जुन मेरे निशाना लगा करके बाण लगाता रहेगा, मैं तो बाण चलाऊंगा नहीं, यही मेरे मारने का एकमात्र छिद्र है, उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं भी ये जानता हूं कि आप लोगों के पक्ष में श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण आपके पक्ष में है और अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धर हैं, ये चाहे तो मुझे मार सकते हैं, परंतु आप लोग शिखंडी को आगे रखना, शिखंडी को आगे करके ही अर्जुन मुझे मार गिरावे, ऐसा तुम निश्चय रखना, तभी धृतराष्ट्र के पुत्रों पर तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से मरने का उपाय सुनकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और वे शिविर में लौट आए। शिविर में लौटने के बाद अर्जुन बहुत उदास हो गए, मुंह लटका के बैठ गए। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन इतनी प्रसन्नता की बात सुनकर के आए, भीष्म जी ने अपनी मृत्यु का तुमको कारण बता दिया, उपाय बता दिया, फिर तुम्हें तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए, मुंह लटकाए कैसे बैठे हो? अर्जुन ने कृष्ण से कहा, माधव भीष्म जी हमारे कुरुवंश के वृद्ध पुरुष हैं, वे हमारे गुरु हैं, हमारे दादा हैं, इन्होंने इतने पांडवों में सेना में एक मुझे ही चुना, मैं इनके बाण मारूं? मुझे वो दिन याद आ रहा है, बचपन में इनकी गोद में खेलता था, अपने धूली धूसरी शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैंने मेला किया है, कितनी बार मैंने छोटे छोटे हाथों से इनकी दाढ़ी पकड़ के खींची है, कितनी बार इन्होंने मुझे छाती से लगाया है, मुझे अपने पास सुलाया है, मुझे अपने हाथों से खिलाया है, वे हमारे पिता के भी पिता है, तब भी मैं उनकी गोद में बैठकर कहता था, पिताजी मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तब वे हंसकर बोलते, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, मैं तुम्हारे पिता का भी पिता हूं, ऐसा कहकर कितने प्रेम से हंसते थे और मुझे अपने छाती से लगाते थे। एक तुच्छ राज्य के लिए ये ममता भरे सारे दिन मैं भूल जाऊं और इनकी छाती में मैं बाण लगाऊं और इनको मैं मारूं? कृष्ण ऐसा क्रूर कर्म मेरे से कैसे होगा? मेरी सेना भले ही नष्ट हो जाए, मुझे भले ही पराजय मिल जाए, पर ऐसा युद्ध तो मैं भीष्म के साथ कैसे कर सकता हूं? नहीं कर सकूंगा। परंतु कृष्ण मैं आपकी शरण में हूं, मैं अपना विचार रखना नहीं चाहता हूं, आपका क्या विचार है? कृष्ण ने कहा, अर्जुन पहले तुमने उपपल्लवी में प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म को मैं मारूंगा, क्या उस समय भीष्म के ये दिन याद नहीं आए? अब बिचारे क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए भीष्म पितामह ने प्यार से तुमको आज्ञा दे दी, इस आज्ञा को मानने में पीछे हटते हो और मेरी सम्मति पूछते हो, तो मेरी सम्मति यही है उन्हें रथ से मार गिरा, ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय संभव नहीं है, और ये यहां तुम्हारी विजय नहीं, ये धर्म की विजय होने वाली है, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो ये पाप की विजय होने वाली है, तुमको दोष लगेगा, बड़े बड़े देवताओं ने जो तुम्हें शस्त्र दिए हैं वे शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए दिए हैं, उठो अर्जुन, स्नेह और परिवार के संबंधों को भूलो और संपूर्ण पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अपनी ममताओं की बेड़ियों को तोड़कर आगे आओ और पितामह भीष्म को तुम मारो। दूसरी बात आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूं, देवताओं की दृष्टि में ये बात अब आ चुकी है, भीष्म जी के परलोक गमन का समय आ रहा है, अब नियति का विधान पूरा होकर के रहेगा, अर्जुन इसको कोई पलट नहीं सकता है, बूढ़ा हो, बूढ़ा हो, छोटा हो, कोई हो, काल आकर के सबको झपटता ही है, कोई कितना ही गुण संपन्न हो, समय सबको मारता है, भीष्म का समय आ चुका है और इस समय तुमको क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए भीष्म पितामह का वध करना उचित है। अर्जुन को बल मिला, अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण ये निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी यूं लौट जाते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं है, उसके बाण जब लगते हैं तो उल्टे बाण खा लेते हैं, बाण वापस नहीं चलाते हैं, मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाणों से मारकर रोके रखूंगा, भीष्म की सहायता के लिए किसी को नहीं आने दूंगा, और यदि अब भीष्म का समय आ गया है तो मेरे अंदर भी आपकी आज्ञा से बल मिल गया है, हम लोग बड़ी प्रसन्नता से कल का युद्ध करेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय दिल में बड़ी घबराहट हो रही है, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म का सामना किया होगा और भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया होगा। संजय ने कहा, महाराज आज युद्ध का 10वां दिन है, आज एक नए जोश के साथ पांडव लोग आए, शिखंडी को आगे किए, सेना का व्यूह बनाए, अर्जुन भीम और सब उनके योद्धा इस प्रकार का व्यूह बनाए हुए थे कि किसी प्रकार से भीष्म और शिखंडी के बीच में कोई सैनिक आकर के टिक न सके। इधर कौरव सेना भी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर आगे बढ़े, आपके पुत्र भीष्म की पूरी रक्षा में थे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, भगदत्त, ये सब बड़े बड़े महान योद्धा भीष्म जी के साथ थे। बड़ा घमासान युद्ध हुआ, सेनाओं का खूब संघार हो रहा था। भीष्म जी को इस प्रकार से बाणों की चोट से शिखंडी ने घायल किया, शिखंडी के साथ युद्ध करते हुए भीष्म जी ने कहा, शिखंडी तेरी जैसी इच्छा हो मुझ पर बाणों का प्रहार कर या मत कर, या मेरे सामने रहे चाहे मत रहे, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी मेरी दृष्टि में तू स्त्री है, तू शिखंडी नहीं, तू शिखंडिनी है, मैं तुझसे युद्ध नहीं करूंगा। शिखंडी ने कहा, महाबाहो मैं आपके प्रभाव को जानता हूं, आप युद्ध के अंदर अजय है, कोई आपको जीत नहीं सकता है, फिर भी सत्य की सौगंध खाकर के कहता हूं आज आपका मैं वध करूंगा, जो उचित समझो वैसा करो, चाहे बाणों का प्रहार करो चाहे न करो, मैं आपको आज जीवित नहीं छोड़ सकता, ये आपके अब जीवन की अंतिम घड़ी है। शिखंडी ने भी भीष्म जी को ऐसा कहा, 5 बाण मारे, भीष्म जी उत्तेजित हुए। धृतराष्ट्र ने कहा, ये क्या हो रहा है, शिखंडी को आगे करके अर्जुन पीछे से बाण छोड़ना, ये कोई न्याय की बात थी, कोई बोलने वाला नहीं था। संजय कहते हैं, महाराज जब भीष्म जी ने उनको आज्ञा दे दी तब वो क्या कर सकते थे, भीष्म जी ने युद्ध में कोई कमी नहीं रखी, रोज जिस प्रकार से युद्ध करते थे उसी प्रकार से वे आगे बढ़ते गए। दुर्योधन ने कहा, दादाजी ये अर्जुन की सेना हमारे हमें भस्म कर रही है, आप एक शिखंडी के पीछे क्या इतने प्रतिज्ञा किए हुए हैं, आप शस्त्र नहीं चलाते, आपका दुरुपयोग हो रहा है। दुर्योधन, मैंने प्रतिज्ञा की है कि 10,000 महाबली क्षत्रियों का प्रतिदिन संहार करके लौटूंगा, ये मेरे प्रतिदिन का काम होगा, उसमें कोई कमी है क्या, आज तो मुझे रणभूमि के अंदर शयन करना है या फिर पांडवों को शयन कराना है, हमारे कर्म में तुम बीच में किसी प्रकार मत बोलो। खूब बड़ा बड़ा भारी संहार हुआ। अर्जुन ने शिखंडी से कहा, शिखंडी आगे बढ़ते चले जाओ, भीष्म से डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी भीष्म जी के ऊपर खूब बाणों की वर्षा करने लगे, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, ये सब वहां आज बिल्कुल सन्नद्ध थे। विराट, द्रुपद, कुंतीभोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, सेना के समस्त योद्धा ये भीष्म जी के ऊपर आक्रमण करने के लिए सब सुसज्जित थे और खूब घमासान इनके अंदर युद्ध हुआ। सात्यकी को भीष्म जी की ओर देखकर अलंबुस राक्षस ने उनको रोका, एक दूसरे को रोकते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है आक्रमण करते हैं। ऐसे खूब लंबा चौड़ा युद्ध चला। तदनंतर द्रोणाचार्य ने अपने हाथ में धनुष लेकर के अपने अश्वत्थामा को कहा कि बेटा आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं पड़े पड़े, धनुष फड़क रहा है, अस्त्र शस्त्र अपने आप धनुष से युक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लग गया है, ये क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। दोनों सेनाओं में पांचजन्य शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार ही सुनाई देती है। इसका अर्थ यही है कि अब कृष्ण और अर्जुन की विजय होने वाली है। ऐसे ऐसे उन्होंने उपाय, उन्होंने लक्षण बताए। उसके बाद समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर आज अर्जुन भीष्म तक पहुंच जाएगा। याद रखो अश्वत्थामन, बड़ा रोमांचकारी युद्ध होगा। देखता हूं शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें अमंगल करने वाली है। मैं युधिष्ठिर के सामने जाता हूं, भीमसेन नकुल सहदेव उनकी रक्षा में रहेंगे और इधर से मैं अपने बाणों से उनको घायल करने के लिए प्रयास करता हूं। संजय ने कहा एक तरफ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा सब खूब आपस में युद्ध करने लगे और धृतराष्ट्र ने पूछा कि फिर युद्ध में आगे क्या हुआ। संजय ने कहा कि भीष्म और पांचाल वीरों सहित अर्जुन आपस में युद्ध करने लगे, कोई भी यह निश्चय नहीं कर सका कि इनमें से कौन जीतेगा। कोई अर्जुन में फुर्ती की कमी नहीं है। उस दसवें दिन दोनों का जो समागम हुआ, सैन्य समागम, बड़ा विलक्षण था। बहुत से सैनिक युद्ध छोड़कर ये युद्ध देखने में लगे हुए थे। पांडवों की सेना को संतप्त करने वाले भीष्म पितामह अब अपने जीवन से उदास उदास होने लगे और उन्होंने विचार किया कि प्राण त्याग दे तो अच्छा है। उन्होंने मन में सोचा अब मैं बहुत वीरों को नहीं मारूंगा। कि पास में खड़े हुए राजा युधिष्ठिर से कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैंने तुमसे कल क्या कहा था, मेरा समय आ रहा है। तुमसे एक धर्मानुकूल बात कही थी, अभी भी कहता हूं, मैं शरीर से बहुत उदासीन हो गया हूं। इस संग्राम में बहुत से प्राणियों का संहार करते करते मेरा अब समय बीत गया है। यदि तुम प्रिय करना चाहते हो तो अर्जुन और पांचाल तथा संजय वीरों को आगे करके और एकदम शिखंडी को आगे करके मेरे वध का जल्दी प्रयत्न क्यों नहीं करते हो। युधिष्ठिर अपनी सेना को और अर्जुन को आज्ञा दे। भीष्म जी का ऐसा आशय समझ करके युधिष्ठिर जी ने आगे बढ़ने का संकेत किया और जोर से उद्घोष किया, हे संजय वीरों, भीष्म से तनिक भी मत डरना, शिखंडी को आगे करके तुम आगे बढ़ो। अब शिखंडी तथा अर्जुन को आगे रखकर भीष्म को धराशायी करने का पूर्ण प्रयत्न किया जाने लगा। उस समय इनके बचाव में भी कोई कम योद्धा नहीं थे, सब भीष्म की रक्षा में लगे हुए थे, बड़े बड़े योद्धा। लेकिन अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण पर बाण छोड़े जा रहे थे। राजा अर्जुन और शिखंडी को मारने के लिए दूसरे भी टूट पड़ते थे, उनको बीच में दूसरे सैनिक उन बाणों को काट रहे थे। अभिमन्यु सेना के सहित आपके पुत्र दुर्योधन के साथ युद्ध करने लगे। दुर्योधन अभिमन्यु के सामने घबराने लगे और दूसरे योद्धा अपने अपने योद्धाओं के साथ में युद्ध करने लगे। दूसरी ओर द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न का धनुष काटकर उसे 50 बाणों से बीन दिया। वे भी अपने अपने बाणों शत्रुओं से युद्ध कर रहे थे। इधर अर्जुन भीष्म जी के सामने जाकर अपने तीखे बाणों से उनको व्यथित करने लगे। यह देखकर राजा भगदत्त अपने मतवाले हाथी पर बैठकर उनके सामने आया और अर्जुन की गति रोकना चाहा, तीखे बाणों से हाथी को घायल कर दिया और आगे भेज दिया। दुशासन आया, सब प्रकार से ये अर्जुन से परास्त होते गए, चलते गए, परास्त होते गए और चलते गए। भीष्म जी उस समय बड़ा पराक्रम दिखा रहे थे। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, ये शांतुनंदन भीष्म जी दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं और अब तुम जोर लगा करके इनका वध करो। ये तुमसे वध करने की पूर्ण अपेक्षा किए हुए हैं और यदि आज यदि इनका वध नहीं कर पाओगे तो फिर ये कभी पूछने का अधिकार नहीं है कि आप पिता, आप दादाजी कैसे मरोगे। क्यों पूछा? और पूछा तो तुम देरी क्यों करते हो? तुम्हारे सिवा कोई ऐसा वीर नहीं है जो भीष्म के बाणों के आघात को सह सके। जल्दी आगे बढ़ो। अर्जुन ने उस समय इतनी बाणों की वर्षा की कि भीष्म जी का रथ और घोड़े ये सब उनसे आच्छादित हो गए। भीष्म पर खूब धावा बोल दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्र भी शिखंडी को आगे रखे हुए थे। अब भीष्म जी ने एक बड़ी प्रबल शक्ति थी, उस शक्ति को अर्जुन की तरफ फेंका और अर्जुन ने उस शक्ति को अपने बाण से तीन टुकड़े कर डाले। तब मनी मन में विचार किया भीष्म पिता ने, यदि भगवान कृष्ण रक्षा न करते तो मैं एक इस शक्ति के द्वारा संपूर्ण पांडवों का वध कर सकता था। इस समय मेरे सामने पांडवों के साथ युद्ध न करने के दो कारण उपस्थित थे। मन में सोच रहे हैं, एक तो ये पांडु की संतान होने के कारण मेरे लिए अवध्य है और दूसरे मेरे सामने शिखंडी आ गया है, पहले स्त्री था। जिस समय मेरे पिता ने माता सत्यवती से विवाह किया उस समय उन्होंने संतुष्ट होकर मुझे दो वरदान दिए थे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी मरोगे तथा युद्ध में तुमको कोई नहीं मार सकता। जब ऐसी बात है तो मैं इस समय अपनी स्वच्छंद मृत्यु ही क्यों न स्वीकार कर लूं, क्योंकि अब उसका समय भी आ गया है। भीष्म जी के इस निश्चय को आकाश में स्थित ऋषिगण, वसु, देवता सब जान गए। उन्होंने भीष्म जी को संबोधित करते हुए कहा, जो किसी ने नहीं सुना, केवल भीष्म ने सुना, हे भीष्म, तुमने जो अब स्वच्छंद मृत्यु से मरने का विचार किया है उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम वही करो और युद्ध की ओर से अपनी चित्त वृत्ति हटा लो। उनकी बात पूरी होते ही ऐसी मंद सुगंध वायु चलने लगी, जल के ऐसे मीठे मीठे फुहारे पड़ने लगे, देवताओं की दुंदुभियां अपने आप बजने उठने लगी और भीष्म जी पर फूलों की खूब बरसात होने लगी। ऋषियों की ये बात किसी दूसरे को सुनाई नहीं पड़ी, केवल भीष्म जी सुन सके और व्यास मुनि के प्रभाव से हे धृतराष्ट्र, मैंने भी सुना। वसुओं की बात सुनकर पिता मैंने अपने ऊपर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होते रहने पर भी अब अर्जुन पर भी हाथ नहीं उठाया है। उस समय शिखंडी ने कुपित होकर भीष्म की छाती में 9 बाण मारे पर खड़े रहे। तब अर्जुन ने मुस्कुराकर पितामह के ऊपर पहले 50 बाण मारे, फिर 100 बाण मारे, उनके मर्मस्थलों को बीन दिया, हजारों बाण लगा दिए। तत्पश्चात भीष्म के धनुष को काट दिया, रथ की ध्वजा काट दी, सारथी को पीड़ित किया। एक एक धनुष उठाते उन सबको अर्जुन काटते चले गए। इससे आहत होकर पिता मैंने दुशासन से कहा, दुशासन, अर्जुन आज क्रोध में भरकर मुझे हजारों बाणों से बीन चुका है, इसके कारण मेरे कवच को भेद कर शरीर में ये बाण घुसे चले जा रहे हैं, ये मूसल के समान चोट कर रहे हैं, ये शिखंडी के बाण नहीं है, ये वज्र के समान बाण अर्जुन के हैं, मेरे अंदर बिजली सी दौड़ रही है, ये ब्रह्म दंड के समान भयंकर और वज्र के समान दुर्दम्य तथा मर्म स्थानों को विदीन करने वाले बाण शायद मेरे जीवन के अंतिम क्षणों को बता रहे हैं। भीष्म जी इस प्रकार से पीड़ित हुए, फिर भी उन्होंने एक शक्ति छोड़ी और अर्जुन ने उस शक्ति की फिर 3 टुकड़े कर दिए। सबको बड़ा विस्मय हुआ। इधर सूर्य अस्त होने लगा। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। महाराज, महात्मा भीष्म की उस अवस्था को देखकर हम लोगों का दिल बैठ गया। पृथ्वी पर वज्रपात के समान शब्द होने लगा। उनके शरीर में सब ओर बाण बिंधे हुए थे, इसलिए वे उन बाणों में टंगे ही रह गए और एक अंगुल की भी जगह नहीं बची। भीष्म अपने रथ से गिर पड़े और बाणों के ऊपर पड़े रहे। गिरते ही उन्होंने देखा कि सूर्य तो अभी दक्षिणायन में है, अभी मरने का समय नहीं है, इसलिए उन्होंने प्राण नहीं त्यागे, होश आवास बना रहा। उस समय आकाशवाणी सुनाई दी, हे महात्मा भीष्म जी, आप संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, इसलिए दक्षिणायन में अपनी मृत्यु को स्वीकार मत करना। पिता, मैंने उत्तर दिया, मैं मरा नहीं हूं, मैं अभी जीवित हूं। गंगा, हिमालय की पुत्री गंगा जी को मालूम हुआ कि मेरा पुत्र भीष्म पृथ्वी पर गिर गया है, अभी प्राणों को बचाता हुआ उत्तरायण की बाट जो रहा है। तब गंगा ने बड़े बड़े महर्षियों को उनके पास भेजा। सब लोग भीष्म की प्रतीक्षा प्रदक्षिणा किए और आपस में कहने लगे, भीष्म जी आप बड़े महात्मा हैं, हे भीष्म पितामह, दक्षिणायन में आप अपना शरीर मत छोड़ना। भीष्म जी ने कहा, हे परमहंसों, आपसे सत्य कहता हूं, मैं दक्षिणायन में त्याग नहीं करूंगा, उत्तरायण होने पर अपने धाम की यात्रा करूंगा। ये मेरा पहले से निश्चय है, मेरे पास पिता का वरदान है, मरना तो मेरे हाथ में है, प्राण धारण करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं। सरसैया पर सोए रहे कौरव पांडव सब ये दशा देखकर मूर्छित हो गए, इंद्रियां जड़वत हो गई। यद्यपि पांडु आज विजयी हुए थे, पांडव सब गर्जना भी कर रहे थे, परंतु हृदय सभी का रो रहा था और सबके सब पितामह भीष्म के पास आए। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, भीष्म जी महाबली थे, इन्होंने अपने पिता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, उस समय रणभूमि में इनके गिर जाने से हमारे योद्धाओं की क्या गति हुई होगी। भीष्म जी ने अपनी दयालुता के कारण शिखंडी पर बाणों की वर्षा नहीं की, तभी मैं समझ गया था कि अब पांडवों के हाथ से कौरव मारे जाएंगे। मेरे लिए इससे बढ़कर क्या दुख की बात होगी कि जो आज मैं अपने पिता के मरने का समाचार सुन रहा हूं। मेरा हृदय वज्र के समान कठोर है। बताओ संजय, भीष्म जी जब मारे गए तो क्या कुछ हुआ? बड़ी वेदना के साथ संजय कहने लगा, सायंकाल में जब भीष्म जी रणभूमि में गिरे, कौरव पांडव बड़े दुखी हो गए। सब भीष्म जी उस समय सरसैया पर लेटे हुए थे, सब वहां आए। आपका पुत्र दुशासन बड़े वेग से द्रोणाचार्य जी के पास गया और जाके कहने लगा, महाराज बहुत कष्ट की बात है, क्या हुआ क्या हुआ? पितामह भीष्म रथ से मूर्छित होकर गिर गए हैं, शरीर में तिल जितना भी बाण से खाली जगह नहीं है। अब युद्ध बंद कर दिया गया है, सब सेना उनके पास जा रही है। कवच शस्त्र उतार कर सब लोग भीष्म के पास पहुंचे। कौरवों ने पांडवों ने वहां जाकर सबको प्रणाम किया, भीष्म को प्रणाम किया। सबने अपने सामने खड़े हुए राजाओं को संबोधित करते हुए बड़े प्रेम से भीष्म पितामह कहने लगे, हे महान सौभाग्यशाली महारथियों, कुरुवंश के पक्ष में लड़ने वाले और पांडवों के पक्ष में लड़ने वाले सभी योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूं। इस समय आपके दर्शन से मुझे बड़ा संतोष हो रहा है। इस संसार में क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले पुरुष हैं। सबका अभिनंदन करने के बाद भीष्म जी ने कहा, देखो मेरा शरीर बाणों के ऊपर पड़ा है और मस्तक नीचे लटक रहा है, इस मस्तक के लिए कोई तकिया ला दीजिए। यह सुनकर राजा लोग बहुत कोमल उत्तम तकिए लाए, परंतु पिता मैंने पसंद नहीं किया और हंस करके कहा, राजा मेरी सैया को देखो और फिर तकिए का विचार कर। कोमल तकिए और बाणों की सैया, यहां अर्जुन है बेटा, अर्जुन मेरे लिए तुम गदरा ले आए लेकिन तकिया नहीं लाए, जल्दी से जल्दी मेरे बिछोने के अनुरूप तकिया लाओ बेटा। तुम सब धनुर्धरों में श्रेष्ठ हो, शक्तिशाली हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का ज्ञान है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल है, अतः तुम ही ये कार्य कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, पितामह जो आपकी आज्ञा। अपने नेत्रों में बहुत बड़ा दुख लिए हुए, हृदय में दुख लिए हुए, नेत्रों में जल लिए हुए अर्जुन ने पितामह भीष्म के पास जोर से बाण मारा मस्तक के, तो मस्तक ऊंचा हो गया। पितामह बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, वाह पुत्र अर्जुन, मेरे भाव को तो समझ गया, वीरों के लायक तुमने तकिया लगाया। पांडुनंदन यदि ऐसा न करते तो मैं तुम्हें क्रोध में आकर शाप दे देता हूं, इतने योद्धाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, संग्राम भूमि में कैसी मेरे लिए सैया बिछाई और उस सैया के अनुरूप कैसा तुमने तकिया लगाया। दूसरे राजकुमारों से कहा, देखिए अर्जुन ने कितना बढ़िया तकिया लगाया है, अब मैं जब तक सूर्य उत्तरायण में नहीं आते इस सैया पर पड़ा रहूंगा, उस समय जो लोग मेरे पास आएंगे वे मेरे परलोक की यात्रा देख सकेंगे, मेरे आसपास की भूमि पर चारों तरफ खाई खुदवा देनी चाहिए। इन सैकड़ों बाणों से विदा हुआ मैं सूर्यदेव की उपासना करूंगा। राजाओं अंतिम प्रार्थना है, आप लोग अब आपस का बैर छोड़कर हो सके तो युद्ध बंद कर दो और पवित्र हृदय से आप सब आपस में मिल जाओ। तदनंतर शरीर से बाण निकालने में कुशल सुशिक्षित वैद्यों को बुलाया गया, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वैद्य उपस्थित हुए कि बाणों को निकाल लिया जाए। भीष्म जी ने उनको देखकर कहा, दुर्योधन इन चिकित्सकों को यहां क्यों बुलाया है, आपके शरीर में लगे हुए बाणों को निकालकर मरहम पट्टी करेंगे, आपको आराम मिलेगा। अरे दुर्योधन, मेरे आराम को यदि तुम समझे होते तो आज ये दिन क्यों आता ना? इन चिकित्सकों को धन देकर विदा कर दो, क्षत्रिय धर्म की जो सर्वोत्तम गति है वो मुझे प्राप्त हो रही है, मैं पृथ्वी पर सड़ करके नहीं मरूंगा, मैं बाणों के ऊपर लड़ करके मरूंगा। बाण सैया पर शयन करने के पश्चात अब चिकित्सा कराना ये मेरा धर्म नहीं है, इन बाणों के साथ ही मेरा दाह संस्कार होना चाहिए। पितामह की बात सुनकर दुर्योधन ने वैद्यों को धन आदि से सम्मानित करके विदा कर दिया। बहुत से राजा लोग वहां इकट्ठे हुए थे। सरसैया पर लेटे हुए भीष्म को 3 बार प्रदक्षिणा की और उन्हें प्रणाम किया और उनकी रक्षा का प्रबंध करके सब लोग चले गए। महारथी पांडव अपनी छावनी में प्रसन्न होकर बैठे थे, उस समय श्री कृष्ण ने आकर युधिष्ठिर से कहा, महाराज बड़े सौभाग्य की बात है कि जो अब आपकी जीत हो रही है, बड़े धन्य भाग हैं जो भीष्म जी मारे गए। ये महारथी संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी थे, मनुष्यों से तो ये अवध्य थे, देवता भी नहीं जीत सकते थे। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज तो आपकी कृपा का फल है, जिनकी रक्षा आप करते हैं उनके विजय में क्या संदेह है? जिसने आपका आश्रय लिया है वो यदि विजयी हो जाए तो क्या आश्चर्य है? भगवान ने कहा, बात ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, सब लोग सबसे पहले पितामह भीष्म के पास पहुंचे, वीर शैया पर लेटे हुए पितामह को प्रणाम किया, सब उनके पास में खड़े हो गए। हजारों कन्याओं ने वहां आकर भीष्म के शरीर पर चंदन, रोली, खील और फूलों की मालाओं से उनकी पूजा की। दर्शकों में स्त्री, बूढ़े, बालक, ढोल पीटने वाले, नट, नर्तक, शिल्पी सब उनके यहाँ दर्शन करने आ रहे थे और बड़ी श्रद्धा से दर्शन कर करके जा रहे थे। कौरव और पांडव भी युद्ध बंद करके कवच तथा हथियार अलग रखकर परस्पर में बड़े प्रेम के साथ अपनी अपनी अवस्था के क्रम से पितामह के पास बैठे हुए थे। बाणों के घाव से पितामह का शरीर जल रहा था, पीड़ा से मूर्छा आ गई। उन्होंने बड़ी कठिनाई से राजाओं की ओर देखकर कहा, राजाओं, शरीर से खून निकलने से भयंकर प्यास लग रही है, जल पिलाओ। सुनते ही क्षत्रिय लोग चारों ओर से उत्तम उत्तम भोजन सामग्री और ठंडे जल से भरे हुए घड़े लाकर भीष्म जी को अर्पित किए। भीष्म बोले, एक क्षत्रिय हो, अब मैं पहले भी भोगे हुए किसी मानवीय भोग को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं मानव लोक से अलग होकर बाण शैया पर शयन कर रहा हूं। यह कहकर वे राजाओं की बुद्धि को निंदा करते हुए बोले, अरे आप में कोई अर्जुन नहीं आया, मेरी बात को, मेरी भाषा को अर्जुन ही समझता है। अर्जुन वही थे, तुरंत निकट आए, प्रणाम किया, विनीत भाव से बोले, दादाजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? अरे बेटा, तुम्हारे बाणों से मेरा शरीर जल रहा है, मर्म स्थान में पीड़ा हो रही है, मुंह सूख रहा है, मुझे जल पिलाओ। तुम ही समर्थ हो, तुम ही मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन ने कहा, पिताजी, दादाजी, जो आपकी आज्ञा। अर्जुन अपने रथ पर बैठे और गांडीव धनुष लिया, टंकार की, सभी प्राणी थर्रा उठे, राजाओं को भय हुआ। अर्जुन ने रथ के द्वारा पितामह की परिक्रमा की और अपने तूणीर से एक दमकता हुआ बाण निकाला और फिर बाण चढ़ाकर मंत्र पढ़ा और पारजन्य अस्त्र से संयोजित किया और उसके बाद देखते देखते उन्होंने भीष्म के बगल वाली जमीन पर कान और कंधे के बीच की खाली जगह को ठीक निशाना लगा करके एक ऐसा बाण पृथ्वी में डाला कि वहां से एक अमृत की धारा उनके मुंह पर आकर के गिरने लगी। इतना मीठा, इतना दिव्य सुगंध से भरा हुआ, इतना शीतल जल उसकी निर्मल धारा से पितामह बड़े प्रसन्न हो गए। वहां देखने वाले सब राजाओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, सबके सब भय से कांपने लगे और दुंदुभियां बजने लगी। अर्जुन की प्रशंसा हुई। भीष्म जी ने कहा, महाभाव, मैं तो पहले से ही जानता था, मुझे नारद जी ने पहले ही बता दिया था, तुम नर ऋषि हो और कृष्ण नारायण है। ये बात मुझे बहुत पहले से मालूम थी, कभी मैंने तुमको नर ऋषि के रूप में नहीं कहा। इस युद्ध को रोकने के लिए हमने बहुत प्रयत्न किया, परंतु दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी, इसकी बुद्धि विपरीत हो गई, बेहोश हो गया, इसकी बात, यह किसी की बात पर विश्वास नहीं करता था। ये सब सुनकर दुर्योधन का मन दुखी हो रहा है। उसे देखकर पितामह ने कहा, दुर्योधन, अभी भी मेरी बात पर ध्यान दो, क्रोध छोड़ दो। तुमने देखा ना, अर्जुन अभी तुम्हारे सामने पृथ्वी के अंदर से कैसी खोई हुई मधुर धारा अपने बाण से प्रकट करके कैसे निशाने से मेरे मुंह पर ला करके रखी है। है कोई ऐसा भी दुनिया में? आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, सौम्यास्त्र, वायव्यास्त्र, वैष्णवास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, धात्रास्त्र, त्वास्त्रास्त्र, सावित्रास्त्र, वैवस्वतास्त्र, जो लोग नाम नहीं जानते वो सब अर्जुन के पास है और कृष्ण को तुम जानते ही हो। तीसरा कोई इन शस्त्रों को जानने वाला नहीं है, इसलिए मेरी राय है अभी तुम मेरे सामने संधि कर लो। इस संधि के काम में श्री कृष्ण तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेंगे। जब तक भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं हो जाता उसके पहले पहले पांडवों के साथ मित्रता कर लो। मेरे मरने के साथ युद्ध की समाप्ति कर दो। दुर्योधन, क्रोधाग्नि को शांत करो, मेरा कहावा मानो, तुम्हारा कल्याण होगा। अर्जुन के पराक्रम को देखकर भी तुम सावधान नहीं होते? प्रेम भाव बढ़े, ऐसा ही मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए। पांडवों का आधा राज्य पांडवों को दे दो। युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ की ओर चले जाए, तुम प्रेम पूर्वक अपने शासन में रहो। पिता पुत्र से, मामा भांजे से, भाई भाई के साथ मिलकर के रहे। मोह बस जो तुम करना चाहते हो वो ठीक नहीं है, इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात बहुत सत्य कह रहा हूँ। सब चुप हो गए और उसके बाद भीष्म पिता मैंने अपना मन परमात्मा में लगाया। दुर्योधन को ये बात अच्छी नहीं लगी, जैसे मरने वाले को दवा अच्छी नहीं लगा करती। भीष्म पिता में मौन हो गए और सब अपने अपने शिविर में चले गए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण।